मेरी अम्मी भी ऑस्ट्रेलिया में है।
उनसे मिलना चाहते हो?
कैसे मुमकिन है? और बाबा अर्दलान भी कहते हैं कि अगर वो मुझे चाहती थी तो छोड़ कर नहीं जाती।
मैं, तुम और अर्सलान तीन लोगों की एक फैमिली है, एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते हैं।
हम तीनों अलग हैं। दिन भर आप हैं और आपका काम, दिन भर मैं हूँ और मेरा कमरा।
18 साल इस औरत के साथ मैंने जिंदगी गुजारी,
इसलिए कि तुम्हें उसके बाप के पैसों की जरूरत थी।
क्या हुआ, नशे में हो
फरजाद?
तुम उसके सामने जाकर उसके कमरे की तलाशी लेना चाहते हो ताकि ये थोड़ा बाप बेटी का रिश्ता जो बाकी है वो भी खत्म हो जाए।
जब से तुमने मुझे नशा करते हुए देखा, मुझे मना तो नहीं किया और अगले दिन से मेरे लिए ड्रग्स भी लेके आ गए।
इतने पैसे कहाँ से आएंगे? कैसे अपनी बहन की फीस जमा करोगे? कहाँ जा रहे हो तुम?
शादी करके इंतजाम हो जाएगा।
मेरे सर की ताज, मेरी बुजुर्ग रहा कहाँ है?
मुझे क्या पता,
कह रही है एक हफ्ते से कॉलेज नहीं आई।
क्यों उसे क्लास में नहीं आने दिया कि गली कूचों में पड़ी रहे? हाँ,
प्रिंसिपल आकर खुद ही आपको बताएंगे।
तुमको यहाँ तनख्वाह नहीं मिलती क्या?
तो फिर मेरे बेटे को अपने ड्रग्स का खरीदार मत बनाओ और अपने घर वापस चली जाओ।
बेटी, वो लड़का जो कूचों में तुमसे प्यार करे
तो उसी गली कूचों में तुम्हें छोड़कर जा भी सकता है।
उसकी जेब से ड्रग्स मिले हैं।
6 साल पहले जब तुम्हारी अम्मी तुम्हें और अरसलान को छोड़कर गई थी तो कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन अब मैं टूटा जा रहा हूं। कबल इसके कि वो कमबख्त कोई लैब तलाश करके मुझे बताए ताकि मैं समझूं कि तुम नशा करती हो या नहीं, समझूं बर्बाद हो गई हो या नहीं। मुझे बताओ कि नशा करने लगी हो क्या? मुझ पर रहम करो और बोलो, रहा तुम नशा करती हो?
लैब में पता चला कि रहा वाकई नशा करती है, ड्रग्स लेती है।
ले जाने दो क्लिनिक, उसकी
मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है।
तुम इधर आओ, यहाँ खड़े रहो, ले जाने दो उसको इलाज के लिए, बेवकूफ आदमी।
मुझे पहचाना?
जी हाँ, रैना साहिबा, रहा की वालिदा, अर्दलान साहब की साबका बीवी।
अर्दलान से शादी के बाद खरीद कर पहन ली ताकि हमेशा मुझे याद रहे कि मैं हर माँ की तरह बच्चों की फिक्र में हूँ।
डॉक्टर कह रही थी रहा उस मरहले में है कि जिसमें लगता है कि जोड़ एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं, बहुत सख्त मरहला है।
बहुत बहुत शुक्रिया, बिलाहर जिंदगी में मुझे थाने का रास्ता भी दिखा दिया तुमने।
मेरी बेटी इससे क्लिनिक के कोने में पड़ी है
और मेरा बेटा जेल के कोने में।
जाइए आप।
अगर मेरी बेटी में खराबी है तो आपकी बेटी में भी है।
ये लीजिए, रेहा के कॉलेज से फोन है, प्रिंसिपल का फोन है।
मैं वहाँ आकर कॉलेज में ताला लगवा दूंगा और इस वक्त तुमसे कह रहा हूँ प्रिंसिपल, मैं वहीं आ रहा हूँ कॉलेज बंद करवाने के लिए। मेरी बच्ची एक हफ्ते से कॉलेज नहीं आई, सड़क पर दरबदर फिरती रही। मैडम,
अरे प्रिंसिपल साहबा, आप अभी तक गई नहीं?
मैं रेसलर था और ये सब जानते हैं। नेशनल टीम के साथ अक्सर सफर पर रहता था। मुझे ये कहना है कि वहाँ मुझे पता चला कि साथ में रहना कितनी अच्छी चीज है। हम तेहरान में काफी दिनों से हैं। अब जब बात आ गई है तो बताता चलूं, हम बहारिस्तान में रहते थे। इनकलाब के बाद तेहरान पार्ट शिफ्ट हो गए, मतलब मैं आ गया था। रजाई साहब मरहूम इनकलाब के इब्तदाई मरहले में घर खरीदने के लिए कर्ज दे रहे थे, उसी वक्त मैंने भी तेहरान पार्स में घर लिया। ये मेरा पहला घर था। जंग के ज़माने में जब सद्दाम सबका जीना दुभर किए हुए था, हम सबको अपनी अम्मी के घर, मतलब वही बहारिस्तान में सुकून मिलता था। वाकई वो घर बहुत ही पुराना घर था, लकड़ी की छतें, लेकिन एक ख़ास उंसियत हो गई थी उस घर से, चूँकि वहीं हम सब जमा होते थे। जनाना कमरा अलग, मर्दाना कमरा अलग था। गर्मी में छत पर मच्छरदानी में सोते थे और मच्छरदानी भी जनानी और मर्दानी थी। सब पैसे जमा करते थे और हंसी खुशी खाते थे। नाराज़ भी होते थे, लेकिन फौरन नाराज़गी दूर भी हो जाती थी। एक दूसरे पर सबको भरोसा था। वाकई सब एक दूसरे का सहारा बने हुए थे। बमबारी का खौफ हम सब की ज़िंदगी से दूर हमारी खुशियों में गुम था, मतलब हम लोग और ज़्यादा बहादुर बन जाते थे। क्यों? चूंकि एक दूसरे पर भरोसा था। और ये हमारे आसपास वालों की कहानी है जो साथ में रहना ज़्यादा पसंद करते। इस घर को देखभाल की ज़रूरत है, घर में सफाई की ज़रूरत है, बिजली के तार में कोई मुश्किल पैदा हो गई है, सीढ़ियों पर रंग करने की ज़रूरत है, सब बर्बाद हो गया है। ये हमारे सुल्तानी साहब जो इस बिल्डिंग के मैनेजर हैं, वो अपनी जेब से तो खर्चा नहीं दे सकते ना। खुदा ना खास्ता अपनी जेब भरने के लिए तो पैसे नहीं लेते हैं। किसी जगह का मैनेजर बनना बहुत ही मुश्किल काम है, मतलब धूल मिट्टी में बैठना और ताने सुनना है। तो फिर अगर सुल्तानी साहब कहते हैं बिजली पानी के अलावा कुछ पैसे दे दीजिए, तो वो चाहते हैं घर मजबूती से खड़ा रहे। अगर ना हो मजबूत तो हम कैसे इस तरह एक जगह जमा हो सकते हैं और कैसे एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं? बन सकते हैं जमशेद साहब?
जी जनाब, सही बात है, मैं इसका मुखालिफ नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि इतने पैसे हों कि हम लोगों पर बोझ ना हो। मतलब अगर अचानक हम 4 मिलियन देना चाहें घर की मरम्मत के लिए, तो ज़्यादा है जलील साहब, है कि नहीं?
जी हाँ, आज तो मुर ज़ाफ़रान के भाव और ज़ाफ़रान सोने के भाव है। जानता हूँ मुश्किल है, लेकिन किस्तों पर देंगे, लेकिन सुकून से रह सकेंगे। किस्तों में दें। हाँ
ठीक है,
नाराज़गी के बगैर। नाराज़गी के बगैर?
नहीं भाई, कैसी नाराज़गी, हम तो कम खाकर सोने के आदी हो गए हैं, नाराज़गी की क्या बात।
तो फिर सलावत भेजें।
अल्लाहुम्मा
सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लीजिए जमशेद साहब, सुल्तानी साहब लीजिए।
मरियम नहीं आई, फिक्र हो रही है, फोन करके देखूं कहाँ रह गई होगी।
ठीक,
मैं अभी आती हूँ।
चाहिए जाइए। हाँ तो कहाँ से शुरू किया जाए सुल्तानी साहब, वायरिंग ज्यादा जरूरी है या?
मरियम तुम कब आई?
बस अभी पहुंची हूँ, कमरे में जाने की हिम्मत नहीं थी मेरी, इसीलिए यहाँ बैठ गई।
आ जाओ टेरिस में बैठो, पड़ोसी लोग आए हैं, थकन दूर हो जाएगी।
नहीं मूड नहीं है मेरा।
जाऊं गुलाब लाऊं, सूंघ लो, तस्कीन हो जाएगी।
नहीं मत लाए, सोंगी तो ठीक हो जाऊंगी।
मरियम, कोई बात हो गई है?
अभी तक सोई नहीं?
तुम कौन सा सोई? मेरे आसपास आदमी भरे हुए थे, 5 भाई थे और 12 मामू, 2 देवर, 3 चचा। लेकिन इन सब में तुम्हारे बाबा की बात अलग है। होशियार, समझदार, बहुत ही अकलमंद। जानते थे कि तुम यहाँ हो टेरेस पे, लेकिन मुझे भेजा तुमसे पूछूं क्या बात है। कहते हैं माँ बेटी राजदार हैं, लेकिन भाब बेटी पर्देदार महरम हैं। कहते हैं पर्देदार महरम किसी काम का नहीं। कहने लगी जाओ तूबा, क्यों ऐसे बैठी हो? मेरी बेटी नाराज है, परेशान है, बारिश में बैठी हुई है। जाओ, जब तक पता ना चले मत आना। तुम्हें क्या हुआ है बेटा?
नहीं अम्मी, कुछ नहीं अम्मी। वो दिन याद आ गए थे, बहुत बुरे दिन थे।
जब बुरे दिनों की बात करती हो तो 2 बातें याद आती हैं। एक तो 5 साल पहले वाले, जब तुम्हारे शौहर सईद का इंतकाल हुआ, और फिर वो दिन जो अर्दलान तमजीद के साथ तुम्हारी मंगनी टूट गई।
वो जो अर्दलान ने हम सब के साथ किया है ना, उससे बाबा की कमर टूट गई है।
अब कैसे वो दिन याद आ गए? मैंने तो कभी किसी को बददुआ नहीं दी, अर्दलान तमजीद को भी नहीं, जिसने हमें बदनाम कर दिया। सभी कहते कि जरूर तुम्हारी ही बेटी में कोई कमी होगी। हाँ, तुम्हारे बाप भी शर्मिंदा हुए और हाजी सानी भी, जो इस शादी में आगे आगे थे। लेकिन जब सईद ने तुम्हारा हाथ मांगा तो कुछ जान में जान आई।
कितने अच्छे दिन थे सईद के साथ। अच्छे लोग क्यों जल्दी चले जाते हैं?
अब तन्हाई खत्म करो बेटी। सईद तो चला गया, खुदा उसकी मगफरत करे, लेकिन अब तो जा चुका है। तन्हाई इंसान को गुमराह करती है बेटी।
मेरे पास जब तक आप हैं, मैं गुमराह नहीं हो सकती।
तुम 40 की हो चुकी, कब तक अकेली रहोगी?
अम्मी, मैं जब तक आपके साथ हूँ तन्हा नहीं हूँ। अम्मी, आज मैंने अर्दलान तमजीद को देखा।
तूबा, मैं अपना बिस्तर बिछा चुका हूँ, खुदा तुम्हें अच्छा रखे। एक जग पानी लेती आना। मरियम को क्या हुआ था?
उसने आज अर्तलान को देखा।
अर्दलान तमजीद साहब, मैं नर्सिंग होम से बात कर रही हूँ। आप अपनी अम्मी की लाश लेने के लिए आ जाइए।
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
पी लीजिए, ये मट्ठा है, आराम से सो जाइएगा।
मुझे नहीं सोना है, सोने से मुझे खौफ आता है, बुरे बुरे ख्वाब आते हैं।
खुदा इंशाल्लाह सब ठीक कर देगा।
गुलबानो, मैं अरसलान से कम मोहब्बत करता हूँ। अरसलान भी रहा की तरह बनना चाहता है, लेकिन लड़कों वाला मॉडल। तुम चुप क्यों हो?
क्योंकि तुमने सबसे बात करने का हक भी छीन लिया है। आवाज ऊंची है, जबान तेज चलती है, काटती है। डर है अगर कुछ कहूँ तो मेरे सफ़ेद बाल की भी इज्जत ना करो। लेकिन तुमको एक नसीहत ज़रूर करूँगी। इतने पैसे, जाहो हशम किस काम के हैं तुम ही बताओ? कफन में तो जेब है ही नहीं, बच्चे तुम्हें देखने को तरसते हैं। जब आते हो तो अपने कमरे में पड़े रहते हो, आखिर वो भी तो तनहा हैं। हम ये कहते हैं उनके लिए इतना अहम नहीं है कि बाप कितना कमाते हैं, वो ये देखते हैं कि उनके लिए कितना टाइम निकालते हैं। और जब टाइम भी देते हो तो माशाल्लाह इतनी कड़वी जबान है तुम्हारी कि वो सुनते ही नहीं है।
कड़वी जबान तो बकवास है। मेरी उम्र और मकाम का कोई मर्द इस वक्त क्या सोचता है? नशा करना?
नहीं, कौन कहता है?
क्यों नहीं, मुझसे सुनो। मैंने कभी सिगरेट तक नहीं पी। उस औरत का गए हुए 6 साल हो गए, किसी औरत को मुड़कर नहीं देखा। मेरी जिंदगी बस कुछ नामुरादों के साथ झड़प है, ताकि कुछ कमा सकूं अपने बच्चों के लिए। मैं उनके लिए पैसे बनाने की मशीन बन गया हूं, चूंकि अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र है। चूंकि मैं नहीं चाहता कि पैसे कमाने के चक्कर में हर किसी के सामने हाथ फैलाएं वो। मैं नहीं चाहता कि दूसरों की जिंदगी पर हसरत हो उन्हें कि क्यों उनके पास है, मेरे पास नहीं है। नतीजा क्या हुआ? रहा कहती है टाइम नहीं देते, मोहम्मद जवाद कहता है टाइम नहीं देते, तुम कहती हो टाइम नहीं देते।
तो झूठ बोल रही हूँ, टाइम देते हो।
उस औरत ने रहा को 13 साल की उम्र में छोड़ा है, लेकिन मुझसे ज्यादा उसे मानती है।
वो भी गलत कर रही है, और ये भी सही है कि तुम्हारे बच्चों को छोड़कर चली गई है, और तुम्हें भी बहुत परेशानी होती है।
अच्छा हुआ चली गई। अखरोट के पेड़ को खुशी होती है जब कव्वे नाराज होकर चले जाएं। उसका जाना उसके रहने से ज्यादा सख्त नहीं था, इस वक्त ज्यादा मुश्किल है। परेशानी इस वक्त है मुझे रहा की हालत ارسلان کا مجھ سے خوف کھانا، مریم سے ملنا۔
مریم؟ مریم کون ہے اردلان؟
السلام علیکم میڈم۔
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
یہ وقف کے نمائندے سے میٹنگ کب ہے؟ آدھے گھنٹے بعد۔ اچھا مریم جی، کل رہا کے باپ سے بات ہوئی آپ کی؟
میں اب اس کے بارے میں نہیں سوچ رہی، اگر اس کا باپ آ بھی جائے تو تم لوگ ہی بات کر لینا، ٹھیک ہے؟
ٹھیک ہے۔
حضور کہاں کہاں چلے؟ آپ سے کہہ رہا ہوں میں۔
ارے جناب، ایسے کیسے ممکن ہے؟ وہ ابھی کسی سے نہیں مل سکتی۔ کل آئے، آ جائے، جائیے جناب۔ ثانی صاحب سے تعلقات کی بنا پر کل اور آج میں نے کچھ نہیں کہا، لیکن کم سے کم دونوں ساتھ ہی میں آیا کیجئے نا۔ ابھی دو گھنٹے پہلے اس کی امی آئیں اور اب آپ، اسے آرام کی ضرورت ہے۔
کس کی امی آئی ہے؟
رہا کی امی کل آئی تھی، ہم نے ملنے نہیں دیا۔ آج ثانی صاحب کے ساتھ آئی تھی تو میں نے تکلفاً انہیں ملنے دیا۔
کیا بکواس کر رہی ہیں محترمہ؟
یہ کیسے آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں؟
رانا واپس آ گئی ہے؟
اس کا مطلب سلام ہوتا ہے۔
سلام، رانا واپس آ گئی ہے؟
چلو کمرے میں چلتے ہیں۔
رانا واپس آئی ہے؟
کمرے میں چلو، وہیں آرام سے بیٹھ کے بات کریں گے۔
رانا واپس آئی ہے؟
اوفو، ہاں واپس آ گئی، چلو بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔
اور تم اس کی مدد کرتے ہو اور لے جاتے ہو میری بیٹی سے ملوانے کے لیے؟
میں نے کسی کی مدد نہیں کی، میں بس تمہارا دوست ہوں، بس۔
دوست؟
ہاں دوست ہوں، وہ بھی ایسے آدمی کا دوست جس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آتا ہے۔ اور چلو چلتے ہیں میرے کمرے میں۔ صبح سویرے آ کے میرے سر پہ سوار ہو گئی، کہہ رہی تھی کہ اردلان کو راضی کر لوں کہ رہا اور ارسلان کو میرے حوالے کر دے، مجھے واپس جانا ہے۔
پانی نہیں پینا ہے؟ پھر
پہلے شاید رہا سے کہا تھا کہ وہ آ رہی ہے۔ میں نے کہا کہ میڈم تمہاری بیٹی نشہ کرنے لگی، کلینک میں پڑی ہوئی ہے،
چونکہ جب اسے ماں کی ضرورت تھی تو ماں کا سایہ اس کے سر پر نہیں تھا، گھوم رہی تھی تم۔ تمہاری بیٹی بیمار ہے، اسے اس کی ضرورت ہے۔ میں لے گیا کہ دیکھیے کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ اب بتاؤ میں نے کس کی مدد کی؟
تم نے اپنے گھر میں آنے دیا؟
تو مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ صبح 4 بجے گھر سے نکال دوں؟
اس وقت کہاں ہے؟
تم سے کیا مطلب؟ کیا چاہیے تمہیں؟
کیا مطلب تم سے کیا مطلب؟ میں اجازت نہیں دوں گا وہ عورت اس کے قریب سے بھی گزرے، اس کا کان پکڑ کر نکال پھینکوں گا وہیں جہاں تھی۔ جی ہاں، گھر نہیں لے جانا چاہیے تھا، کلینک نہیں لے جانا چاہیے تھا، اب اسے تمہارے گھر میں نہیں رہنا چاہیے۔
بات تو یہ ہے کہ وہ میرے گھر پر نہیں، ہوٹل میں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر اتنی رات کو کوئی بھیڑیا بھی میرے گھر کی بیل بجائے تو اسے ٹھنڈک میں باہر نہیں چھوڑوں گا۔ تیسری بات
یہ ہے کہ تمہیں بہت کچھ پتا ہے جو مجھے نہیں پتا ہے۔
دیکھو، فالتو بات مت کرو، کہنا کیا چاہتے ہو وہ بتاؤ۔
اصل بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم جانتے تھے کہ مریم زمان میری بیٹی کے کالج کی پرنسپل ہیں، لیکن مجھ سے نہیں کہا۔ جانتے تھے کہ میرے بہت قریب ہیں، لیکن مجھے نہیں بتایا۔ اصل بات یہ ہے دوست، کہو۔ اچھا،
میں نے ایسا کیا کیا کہ تم دوستی کا مذاق اڑا رہے ہو؟ وہ اپنی زندگی جی رہی تھی اور تم اپنی زندگی جی رہے ہو۔ میں ادھر سے ادھر بات کرتا تو اچھی بات تھی۔
دیکھو محمد جواد، تم جانتے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں۔
نہیں، واقعی میں نہیں جانتا کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، وہ لمبی چھٹی لے کر گھر پر تھی۔ وہ اس وقت 6 مہینے سے اس کالج میں پرنسپل ہے جو حاجی ثانی نے وقف کیا ہے۔ اس کے باپ حاجی ثانی کے 30 سال پرانے دوست ہیں، یہ تو تمہیں معلوم تھا نا۔ چلو، اب بتا دیا تو اب تم خوش ہو گئے نا؟ اب بتاؤ اس سے کہاں ملاقات ہے؟ اس سے بات بھی کی؟
جناب، کلینک سے فون ہے، کہہ رہی ہیں بہت ضروری کام ہے۔
میری بیٹی کے بارے میں ہے، لیکن فون تمہیں کرتے ہیں؟
جی ہاں، ان کے پاس میرا نمبر ہے۔ جب اس کلینک میں کوئی نمبر وہ مانگ رہی تھیں تو آپ ہنگامہ مچائے ہوئے تھے، تو میں کیا کرتا؟ بتاؤ۔
ہیلو۔
ہیلو ثانی صاحب، السلام علیکم۔ ہمارے سائیکالوجسٹ آئے ہوئے ہیں،
انہوں نے رہا کی فائل پڑھی ہے۔ وہ علاج شروع کرنے سے پہلے رہا کے والدین سے ملنا چاہتے ہیں۔ ہم نے اس کی امی کو فون کیا ہے، صبح نمبر دے کر گئی تھی۔ آپ اس کے والد کو اطلاع دے دیں تاکہ وہ بھی آ جائے۔
کس نے آپ سے کہا کہ اس کو فون کریں؟
کیا ثانی صاحب؟
میں تمجید ہوں، رہا کا باپ۔ میں وہیں آ رہا ہوں، جسے بھی میں نے اپنی بیٹی کے سرانے دیکھا اسے جلا کر راکھ کر دوں گا۔
اس لڑکی کی کوئی امی نہیں ہے۔
امی نہیں ہے؟ کہو۔ اچھا، جناب محمد جواد صاحب، یہ آپ تھے جنہوں نے رانا کے قدم وہاں جمائے، اوقات تو دیکھو۔ محترمہ نمبر دے کر گئی ہیں تاکہ انہیں مشورے کے لیے بلایا جائے، لیکن تم یاد رکھنا، میں اس کے پاؤں کاٹ دوں گا۔ اپنے بچوں کی قسم، اگر تم میرے پیچھے آئے تو ہماری دوستی بھی ختم ہو جائے گی۔ کہو۔ اچھا، یہیں بیٹھو۔
अरे जनाब आपके बाकी पैसे।
शुक्रिया तमजीत साहब, मैंने उन्हें डॉक्टर के पास जाने की इजाजत नहीं दी, आपका इंतजार कर रही थी।
मेरी बेटी का यहाँ का खर्चा कितना है? 1 मिलियन 2 मिलियन कितना? और अगर मैं और ये खातून आधे घंटे के लिए यहाँ बैठकर बात करें तो कितने पैसे और देना पड़ेंगे?
सानी साहब ने मुझसे ये नहीं कहा था कि इसे यहाँ एडमिट करने में इतनी मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी।
मैं बताऊंगा है पैसे कितने बढ़ेंगे।
बढ़ेंगे नहीं, बस आप मिलकर किसी तरह अपनी बेटी की मदद कीजिए।
जरूर, आप जाइए, हम किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे।
मैं कभी तुमसे नहीं डरी, तो फिर ऐसे मुझे मत देखो।
इसलिए कि मैं कभी डरावना नहीं बना, लेकिन अब बनना चाहूंगा। या तो तुम खुद जहां से चली जाओगी या मैं खुद तुम्हें निकालूंगा।
तो मुझे निकालोगे? तुम गरीब और फकीर इंसान जो मेरे बाबा के पैसों के पीछे दौड़े। नहीं लगता। तुम्हारी बेटी नशा करती होगी चूंकि तुमसे डरती है। मेरा अरसलान कैसा है? हाँ, वो कब नशा करेगा? वो कब तुम्हारे इस खड़ूस में जाश का शिकार बनेगा? तुम्हारी बेटी तुम्हारे डर से एक इंसानी स्मगलरों के करीब हुई। तुम जानते भी हो इंसानी स्मगलर कैसे होते हैं, मतलब उनके सर को बॉर्डर पर काट कर फेंक देना। और मैं इसीलिए यहाँ आई हूँ कि मेरे बच्चे जिंदा रहें। मेरे बच्चों को दो, मैं ले जाना चाहती हूँ। 6 साल पहले भी तुमसे कहा था कि मेरे बच्चे दो, लेकिन नहीं दिए। 6 साल से अपने बच्चों के बगैर रोज घुट घुट कर जीती हूँ। मेरे बच्चों को दो। 6 साल अपने बच्चों के हक में बाप नहीं बने बल्कि बर्बाद कर डाला।
मेरे बच्चों से दूर रहो, मेरे बच्चों के करीब मत आना। अपने बाप की बेटी हो तो मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। मेरे बच्चों से दूर रहो, सुना तुमने?
कानून मुझसे नहीं कहता कि अपने बच्चों की तरफ ना जाऊं, और तुम्हारा काम तो गैर कानूनी तरीके से पैसे जमा करना है।
कहना क्या चाहती हो?
ये के तुम्हारे कदम बे कदम आती रहूंगी ताकि अपने बच्चों को ले सकूं।
कदम ब कदम?
कदम बे कदम।
तो फिर आओ।
आऊंगी।
ए जनाब, जनाब सानी साहब फोन पर है, आपसे बात करना चाहते हैं।
तुम दखल मत दो, कहो। अच्छा,
ए तो आप ही बात कर लीजिए ना, कम से कम आप ही बात कर लीजिए। अरे तो फिर कौन इनसे बात करेगा, वो बात नहीं कर रहे हैं।
जनाब क्या है? तमजीद साहब, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, अब ये क्या कर रहे हैं? तमजीद साहब क्या कर रहे हैं? अरे जनाब ये बीमार है, क्या कर रहे हैं?
ये क्या कर रहे हैं आप?
डॉक्टर,
ये ये क्या हिमाकत कर रहे हैं?
मेरी बेटी है, मैं उसे लेने आया हूँ।
अरे
मैं देखना चाहता हूँ कौन कदम ब कदम मेरे पीछे
मेरी
आएगा।
बेटी नहीं जाएगी जब तक इलाज नहीं हो जाता।
तुमसे क्या मतलब, तुम कौन होती हो?
जब मैं कहती हूँ कदम ब कदम, मतलब यही है।
नहीं, मैं माफ नहीं करूंगी।
तुम्हारे बच्चे बहुत अकेले हैं, उन्हें माँ की जरूरत है।
मुझे ड्रग्स चाहिए अम्मी।
अपना नशा छोड़ना पड़ेगा, उस लड़के को भी भूल जाओ।
रहो, उनकी माँ बनो, मुझसे शादी करो।
मुझे प्यार की जरूरत है।
کسی اگه هنوزم عاشق منی، چرا به داد من نمیرسی؟ من از تصور نبودنت رو شونه تو گریه میکنم، منی که دل بریدم از همه. ببین برای تو چه